नमस्कार भारत, तारीख 23 अक्टूबर, दिन मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। डोनाल्ड ट्रंप की रूस और चीन को धमकी, अमेरिका बनाएगा परमाणु हथियार। सबरीमाला मंदिर के बंद हुए कपाट, लेकिन महिला पत्रकार नहीं भूली है विरोध प्रदर्शनों को।
पुलिस ने घेरा बनाकर हमको आगे जैसे जैसे लेते गए ऊपर चढ़ाई पर, धीरे धीरे करके साइड में कुछ कुछ युवक कुछ नारेबाजी करते हुए और मलयालम में वो कह रहे थे कि आप वापस जाइए।
रायपुर की किसान रैली में राहुल गांधी के वादों पर भाजपा का क्या है कहना?
किसान कहीं उनके बरगलाने में नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस केवल नारा देती है, धरातल पर उसको उतारती नहीं है।
होगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि के उल्लंघन को लेकर रूस पर अपने आरोपों को दोहराते हुए परमाणु हथियार बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि संधि से बाहर होने का फैसला कई सालों पहले किया जाना चाहिए था। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस और अमरीका के बीच इस संधि को लेकर चल रही तकरार पर चिंता जाहिर की है। मध्य अमरीकी देशों से हो रहे पलायन को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होंडुरास, ग्वाटेमाला और एल सेल्वाडोर जैसे देशों की मदद रोकने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि ये देश हजारों लोगों के पलायन को रोकने में असफल हुए हैं। भूख और गरीबी से परेशान होकर इन देशों से निकले हजारों लोग अमरीका की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अमरीका ने उन्हें अपने यहाँ लेने से इनकार कर दिया है। ये लोग मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेन्या नेटो ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की तरफ बढ़ रहे इन लोगों को मेक्सिको में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में बताया कि ब्रेक्जिट को लेकर लगभग 95% शर्तों पर सहमति हो गई है, लेकिन आयरिश सीमा पर अब भी बातचीत अटकी है। उन्होंने कहा कि वे ब्रेक्जिट को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार करने के लिए तैयार हैं। वहीं लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रेक्जिट मामले को संभालने के थेरेसा मे के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,
The Conservative Party has spent the past 2 years arguing with itself instead of negotiating a sensible deal.
Conservative Party ने सार्वजनिक हित में कोई विवेकपूर्ण समझौता करने के बजाय आपसी बहस में ही पिछले 2 साल निकाल दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 95% समझौता हो चुका है, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक सब कुछ पर सहमति नहीं हो जाती तब तक कुछ भी सहमत नहीं माना जाएगा। ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी के मामले में वैश्विक स्तर पर विरोध के बावजूद अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मनुशीन ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। सऊदी स्टेट मीडिया के मुताबिक दोनों ने बातचीत में रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह खाशोजी की मौत पर सऊदी अरब के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि इस मामले के सुलझने तक जर्मनी सऊदी अरब को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा देगा। फ्रांस में 3 पूर्व स्कूल छात्रों ने पुलिस पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले साल मार्च में ब्रुसेल्स की एक स्कूल ट्रिप के दौरान ऐसा किया गया। पेरिस में एक रेलवे स्टेशन से होकर जाते हुए उनकी 2 बार जांच की गई। दूसरे बच्चों के सामने उनके बैग खुलवाए गए। उनकी पूर्व शिक्षिका का भी कहना है कि उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ, हालांकि अधिकारियों ने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये लोग एक स्कूल ट्रिप पर थे। फ्लोरिडा में नेशनल हरिकेन सेंटर का कहना है कि श्रेणी 5 का चक्रवात विला मेक्सिको की तरफ बढ़ रहा है। यह चक्रवात मेक्सिको के दक्षिणी पश्चिमी तट से टकरा सकता है। इसमें 240 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, हालांकि जमीन पर पहुंचने तक इसकी गति कुछ कम होने की उम्मीद है। स्वघोषित गणराज्य सोमालीलैंड और पंटलैंड के दावे वाले सूल क्षेत्र में जमीन को लेकर 2 गुटों की लड़ाई में 40 लोगों की जान चली गई। इस लड़ाई में करीब 80 लोग घायल हो गए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमरीका रूस और चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने परमाणु हथियारों को मजबूत करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि रूस ने 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी INF संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने पहले इस संधि को छोड़ने की बात कही थी, हालांकि रूस ने किसी भी उल्लंघन का खंडन किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि यानी INF को लेकर अमेरिका और रूस का टकराव बढ़ता जा रहा है, जहां रूस ने संधि से पीछे हटने पर परमाणु शक्ति संतुलन बनाने की चेतावनी दी है, वहीं अमेरिका ने रूस पर अपने आरोपों को दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से रूस पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने अमेरिकी परमाणु हथियार बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा,
रशिया हैज नॉट एडहियर्ड टू द एग्रीमेंट, दे शुड हैव बीन डन इयर्स अगो।
रूस ने समझौते का पालन नहीं किया, ये फैसला कई सालों पहले किया जाना चाहिए था। हमारे पास दूसरों के मुकाबले ज्यादा पैसा है, जब तक कि उन्हें होश नहीं आ जाता हम निर्माण करते रहेंगे। जब वो करते हैं तो हम सभी स्मार्ट बनेंगे और फिर एक दिन हम सब रुक जाएंगे, बल्कि रुकेंगे ही नहीं, हम हथियार कम करना शुरू कर देंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। INF एक ऐसा समूह है जो जमीन पर मध्यम दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती को रोकता है। इसकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक है। यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और गैर परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है। इस पर दोनों देशों ने शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान हस्ताक्षर किए थे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोफ ने 1987 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के साथ यह संधि की थी। इस पर मिखाइल गोर्बाचोफ ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु हथियार संधि तोड़ने की योजना परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बड़ा झटका होगी। इस मामले पर यूरोपीय संघ ने भी चिंता जाहिर की है। यूरोपीय संघ की प्रवक्ता माया कोत्सी एंचिच ने कहा,
We believe that the US and Russia need to remain engaged in constructive dialogue to...
हमें यकीन है कि अमरीका और रूस को इस संधि को बचाने के लिए ठोस बातचीत करते रहने की जरूरत है। साथ ही उन्हें इसके पूर्ण क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह यूरोप और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये थी यूरोपीय संघ की प्रवक्ता माया कोत्सी यांचिच। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी इस मसले पर बातचीत के लिए रूस में मौजूद है। वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। वहीं रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रुशेफ ने कहा है कि रूस संधि पर पारस्परिक शिकायतों के निपटान के लिए अमेरिका के साथ बात करने के लिए तैयार है। वहीं विशेषज्ञ इस टकराव को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं इससे फिर से हथियारों की होड़ शुरू ना हो जाए।
अमरीका की रूस को धमकी, ब्यौरा सुना रही थी कमलेश मठेनी। 5 दिन की पूजा के बाद कल केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, लेकिन कोई भी महिला इस दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। महिलाओं को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है कि क्या आप फिर ऊपर जाएंगी, और महिला कह रही है कैसे जा सकती हूँ, आपको पता है वहाँ क्या होता है। इस महिला का जवाब बहुत मायने रखता है और कारण साधारण है। बिंदु जकरिया केरला की एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हैं और उन्होंने कड़ी पहाड़ी पर चढ़कर स्वामी अय्यप्पा का दर्शन करने की कोशिश की थी। उनके साथ भी वही हुआ जो पिछले 5 दिनों में 6 महिलाओं के साथ हुआ था। महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। सारी महिलाएं 50 साल की उम्र से कम थी। हर वक्त जब ये महिलाएं मंदिर की ओर जाने की कोशिश करती तो उनको प्रदर्शनकारी घेर लेते थे और उनको वापस लौटना पड़ता था। इसी परेशानी का सामना पत्रकार सुहासिनी राज को, दलित कार्यकर्ता मंजू को, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से वसंती और लता को भी करना पड़ा था। इन महिलाओं को पुलिस सुरक्षा तभी दी गई जब मामला हद से बाहर होते जा रहा था। पुलिस 2 महिलाओं को खुद सारी सुरक्षा के साथ ले गई थी। उनका नाम सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा और पत्रकार कविता जकाला है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि अगर महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया तो वो मंदिर ही बंद कर देंगे तो इसका कैसे उपाय निकल सकता है? इस सवाल पर ट्रावणकोर देवसम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रायर गोपाल कृष्णा जवाब देते हैं।
Nowadays we are very proud to continue this type of prarthana.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की और भी बड़ी पीठ को फैसला लेना होगा। अगर कोर्ट हमारी समीक्षा याचिका को नहीं सुनता तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वो एक कानून बनाए जिससे सबरीमला को भी वही दर्जा दिया जाए जैसे तिरुपति देवस्थानम बोर्ड को दिया गया है। ये थे प्रायर गोपाल कृष्णा के शब्द। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से महिलाओं को मिले अधिकार से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? तिरुवनंतपुरम के सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर जे देविका कहती हैं,
किसको उम्मीद थी कि सैकड़ों महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी? केरला में महिलाएं बंद समाज में रहती हैं और जो महिलाएं जाना चाहती हैं वो इस तरह के हिंसा के माहौल में नहीं जा सकती।
बहरहाल 5 दिन के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का मौका भी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका की सुनवाई के समय परंपरा जीतेगी या देश के सबसे बड़े न्यायालय का आदेश? इमरान कुरैशी, BBC, पत्तनमतिट्टा, केरला।
कल मंदिर परिसर के बाहर से पुलिस ने पूरे मीडिया को वहां से चले जाने को कहा था। पुलिस ने मीडिया से कहा था कि देर रात को अंतिम पूजा के होने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ धार्मिक समूह और कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध करती रहीं। ऐसे ही उग्र विरोध के कारण न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार सुहासिनी राज और द न्यूज मिनट की पत्रकार सरिता को बीच रास्ते से वापस आना पड़ा था। BBC संवाददाता कीर्ति दुबे की रिपोर्ट।
28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबरीमला की लगभग 150 साल पुरानी वो परंपरा खत्म हो गई जिसमें 10 से 50 साल की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। लेकिन कुछ धार्मिक समूह और कुछ राजनीतिक पार्टियां देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अब भी स्वीकार नहीं कर सकी हैं। आलम ये है कि अब तक इस उम्र की कोई भी महिला सबरीमला मंदिर में अयप्पा के दर्शन नहीं कर सकी है। कई महिलाओं को मंदिर के बीच रास्ते से वापस आना पड़ा है। ऐसी ही एक महिला है सुहासिनी राज। सुहासिनी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की पत्रकार हैं जो अपने सहकर्मी के साथ 18 अक्टूबर को रिपोर्टिंग करने सबरीमला पहुंची थी, लेकिन उनका कहना है कि हिंसक होते प्रदर्शन के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। सुहासिनी इसे अपने सबसे डरावने वक्त के तौर पर याद करती हैं और कहती हैं,
पुलिस हमें बिना अकम्पनीमेंट के आगे नहीं जाने देती, तो पुलिस ने घेरा बनाकर हमको आगे जैसे जैसे लेते गए ऊपर चढ़ाई कर, धीरे धीरे करके साइड में कुछ युवक कुछ नारेबाजी करते हुए और मलयालम में वो कह रहे थे कि आप वापस जाइए, और एक तरीके का एक उग्र सा माहौल बढ़ता चला। और जब तक हम ये मिड पॉइंट तक पहुंचे वहां तक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और टेरेन भी एक ऐसा था कि सामने पहाड़ी के ऊपर जो है कम से कम 200 लोगों का मॉब लग रहा था कि घेरा हुआ है सामने से, और वो बहुत जोरों से हवा में चिल्ला रहे थे कि वापस जाओ मलयालम में।
द न्यूज मिनट की पत्रकार सरिता बालन को भी ऐसे ही हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि वह किसी तरह बचकर वापस आ सकी। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए वे कहती हैं,
कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि मैं मीडिया से हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन हमारी बात को अनसुना करते हुए वे हम पर चिल्लाने लगे कि मीडिया वापस जाओ। मैं केरल ट्रांसपोर्ट की बस पर चढ़ी। इस बस में कई श्रद्धालु थे और वे दूसरे राज्यों के लोग थे। अभी बस चली ही थी कि उसे बीच में रोक दिया गया। एक भीड़ ने पूरी बस को घेर लिया। ये भीड़ बेहद उग्र थी। तभी मुझे एक अन्य मीडिया साथी मिल गए। उनकी मदद से मैं सुरक्षित नीचे आ सकी। इसके बाद पुलिस भी आ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक हर किसी को बिना किसी भेदभाव के मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। 17 अक्टूबर को मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले गए और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के साथ भी महिलाओं को एंट्री नहीं मिली।
मंदिर में नहीं मिला प्रवेश, रिपोर्ट सुना रही थी BBC संवाददाता कीर्ति दुबे। छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भले विधानसभा उम्मीदवारों के नाम अब तक पूरी तरह तय नहीं हो पाए हों, लेकिन नेताओं के प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई है। कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर में पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में ठीक 20 दिन बाद 12 नवंबर को विधानसभा के पहले चरण का मतदान होगा। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। किसान हुंकार रैली नाम से आयोजित इस सभा में राहुल गांधी ने सबसे पहले मीडिया को निशाने पर लिया और केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।
अरुण जेटली के मामले में हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रेस हाउसेज ने सच्चाई की रक्षा नहीं की। भाई और बहनों, सच्चाई है कि फाइनेंस मिनिस्टर को मेहुल चौकसी ने, फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी को मेहुल चौकसी ने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में पैसा दिया है।
राहुल गांधी ने वादा किया कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों के सभी कर्जे माफ कर दिए जाएंगे।
मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मैं 15 लाख की बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान ऊपर से गिर जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के आने के 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा।
किसानों को लेकर राहुल गांधी का वादा था तो जाहिर है इस मामले में सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। भाजपा के प्रवक्ता सुनील सोनी ने राहुल गांधी के वादे को महज राजनीतिक नारा करार देते हुए कहा कि जनता अब ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करती।
किसान कहीं उनके बरगलाने में नहीं आने वाले, कांग्रेस केवल नारा देती है धरातल पर, उसको उतारती नहीं है।
चुनाव हैं तो वादे भी होंगे और उन वादों का खंडन भी। जैसे जैसे टिकट का बंटवारा शुरू होगा और चुनाव की तारीखें पास आती जाएंगी, वैसे वैसे वादों और उनके खंडन का सिलसिला भी तेजी से बढ़ेगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI इन दिनों अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों के आपसी आरोप प्रत्यारोपों से चर्चाओं में है। CBI प्रमुख आलोक वर्मा और CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए हैं। कल CBI ने अपने ही मुख्यालय में छापा भी मारा। आखिर CBI के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच जारी ये जंग आगे चलकर क्या रूप ले सकती है? BBC संवाददाता नवीन नेगी ने CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर और IB के पूर्व निदेशक अरुण भगत से बात की और यही सवाल किया।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि पब्लिक में ऐसी कोई बात आए जब दो जो सीनियर अफसर हैं वो आपस में उनकी बने ना। यदि मतभेद थोड़ा सा थोड़ा बहुत होता है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, सोच अलग अलग होता है किसी मामले पर, तो हम लोग बैठ के इसको सुलझा लेते हैं। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये बात पब्लिक में आए और ऐसा हो जाए कि मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हो।
इस लड़ाई को आप कहां जाते हुए अब देखते हैं, कर रहे हैं? देखिए,
ये तो अब एक तो सरकार को डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अब हालात तो जो ऐसे लगते हैं कि दोनों अफसर एक जगह तो नहीं रह सकते अब। तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक फैसला करना पड़ेगा कि इनमें से कौन अफसर रहे और कौन अफसर जाए। नए अफसरों को नियुक्त करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन CVC के सुपरविजन में या किसी और के सुपरविजन में करानी पड़ेगी।
और आपको क्या लगता है कि जब CBI जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आता है और उसकी छवि को लेकर पहले भी कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं कि CBI इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद अब इस तरीके के मामले के सामने आने के बाद सरकार के पास क्या विकल्प हैं कि वो किस तरीके से इस CBI की इमेज को बचा सके?
इमेज तो खराब हो ही गई है और आज से नहीं, ये तो 3-4 साल से हो चुका है। हालात ये हैं कि दो पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, और एक तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर हुआ है। तो छवि तो CBI को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत चोट लगी है, और ये तो बहुत ही समझदार कोई नया अफसर, क्योंकि आलोक वर्मा भी ज्यादा देर तो अब उनका समय रहा नहीं है, उनका टेन्योर 2 साल का है और मैं समझता हूँ कि चंद महीने में ही, 1-2 महीने में शायद उनका टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही सुलझा हुआ अफसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि इस डिपार्टमेंट में जो खामियां हैं वो पूरी की जाए।
सीबीआई अधिकारियों में विवाद, बात कर रहे थे सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अरुण भगत। अब जान लेते हैं कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में कमलेश मठेनी पहुंच चुकी हैं। जी कमलेश, बताएं क्या कुछ है खास।
हाँ शाहिद, अभी हमने जैसे सीबीआई की खबर को कवर किया, ऐसे कई अखबारों ने आज इस खबर को कवर किया है। हम इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे तो लिखा है सीबीआई गोज आफ्टर सीबीआई। इसी तरह से नवभारत टाइम्स देखेंगे तो सीबीआई हेडक्वार्टर पर सीबीआई का ही छापा। ये मामला है कि सीबीआई में ही 2 अफसरों के बीच में तकरार चल रही है। मोइन कुरैशी, मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में सीबीआई के विशेष निदेशक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था उन्हें, क्लीन चिट लेने को लेकर, और इसके साथ ही अब छापा हुआ है। और साथ ही डीसीपी जो है उनको भी, देवेंद्र कुमार डीसीपी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने राकेश अस्थाना जो विशेष निदेशक हैं उनकी रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट की थी उन्होंने, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
राकेश अस्थाना के ऊपर लगा आरोप, फिर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा जो निदेशक हैं फिर उनके ऊपर आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और
जी बिल्कुल, इसी तरह से रॉ की भी इसमें भूमिका है। दैनिक जागरण ने जैसे लिखा है कि रॉ के अफसर ने रची थी सीबीआई निदेशक को फंसाने की साजिश। तो मामले जो हैं कई लेवल पर और कई संस्थानों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में आधार कार्ड से जुड़ी खबर है, जिसके मुताबिक दूरसंचार कंपनियों में उलझन बनी हुई है कि आधार से जुड़ा डाटा डिलीट करें या ना करें, क्योंकि जो आदेश था उसमें ये है कि अगर हम डाटा को फ़ोन नंबर से ही डीलिंक कर देते हैं तो क्या वो डिलीट करना माना जाएगा या नहीं। इसी तरह से आधार से ही जुड़ी एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जिसमें पेटीएम के जो संस्थापक हैं उनको धमकी दी जा रही थी कि उनका आधार से जुड़ा डाटा सार्वजनिक करने को लेकर उनसे 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, और इसमें शामिल उनकी निजी सचिव ही इसमें शामिल थी और उनके पति भी थे, जिसमें अभी गिरफ्तारी हो चुकी है 3 लोगों की। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक टैक्स पेयर से, करदाताओं से जुड़ी खबर है, जिसके मुताबिक नौकरी पेशा लोगों पर अब भी कर का भार ज़्यादा है। हालांकि जो दूसरे पेशों में लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, लेकिन अब भी जो वेतन भोगी हैं वो ज़्यादा कर दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदी अखबारों में अमर उजाला की तरफ जाएं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक रूप से राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार नहीं कहा है, घोषणा नहीं की है, और कांग्रेस को इसके लिए बड़ा मसला नहीं है प्रधानमंत्री का पद।
एक खबर मैं भी बता दूं, नवभारत टाइम्स में है कि बंद रहे 400 पंप, 140 रुपये प्रति लीटर तक ब्लैक में पेट्रोल मिला। कल जैसे पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग को लेकर कल जो है वो हड़ताल पे थे पेट्रोल पंप के मालिक, उन्होंने कल बंद कर रखा था। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में कहा जा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के कि वहाँ 140 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल बिका।
बिल्कुल, और कई लोग जो है इससे पहले ही रात में ही पेट्रोल भरवा चुके थे, जैसे कि हर बार होता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए कमलेश। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कई इलाकों में कल भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम में सेना और चरमपंथी समूहों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 आम नागरिकों के मारे जाने के विरोध में बुलाया गया था। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सुनिए मुजफ्फराबाद से हमारे सहयोगी औरंगजेब जर्राल की ये रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर में रविवार को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और चरमपंथियों के बीच फायरिंग से आम लोगों की मौतों पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भर में सोमवार को भारत मुखालिफ प्रोटेस्ट किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सरकार ने किया था। इस हवाले से सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी मुजफ्फराबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। विरोध प्रदर्शन में शरीक अफराद ने आज़ादी की हक और भारत के खिलाफ नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान ने यूनाइटेड नेशन समेत ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से मुतालबा किया कि वह भारत प्रशासित कश्मीर में आम लोगों की इस तरह की घटना का फौरी नोटिस लें।
मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ आज के इज्तम से कि अब वो सियासी सफारती और अखलाकी मदद से हटकर रियासत जम्मू कश्मीर के उन हुर्रियत पसंदों की मादी मदद करे।
भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने वाली कोई 2 दर्जन से ज्यादा चरमपंथियों की तंजीमों के ग्रुप यूनाइटेड जिहाद कौंसिल ने भी रविवार को राजधानी मुजफ्फराबाद में कश्मीर घाटी में होने वाली ऐसी घटना के खिलाफ भारत मुखालिफ प्रोटेस्ट किया था, जिसमें चरमपंथियों की तंजीम और यूनाइटेड जिहाद कौंसिल के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और दीगर तंजीमों से तलक रखने वाले चरमपंथियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सैयद सलाहुद्दीन ने पाकिस्तानी सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें मसले कश्मीर पर अपनी पॉलिसी को दोबारा नए तरीके से जायजा लेकर जानदार बनाना होगा।
हमें सपोर्ट चाहे सपोर्ट, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि पारसी माजरत खाना नीम जाना और बुजदिलाना पारसियां नहते कश्मीरियों को भारत के जुल्म से नजात नहीं दे सकते। अल्लाह की जात पर भरोसा करके आप हमें मदद करें।
कोलगाम घटना के खिलाफ सोमवार को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, छोटे बड़े शहरों में भारत मुखालफ प्रोटेस्ट, जलसे जुलूस और रैलियां निकाली गईं।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन, रिपोर्ट सुना रहे थे औरंगजेब जर्राल। अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी हॉकी से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारतीय टीम ने एक बार फिर बेहतरीन खेल दिखाते हुए टूर्नामेंट के अपने तीसरे मैच में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जापान को 9-0 से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। इससे पहले भारत पाकिस्तान और ओमान को हरा चुका है। जापान के खिलाफ भारत के 6 खिलाड़ियों ने रविवार देर रात को हुए इस मुकाबले में गोल दागे। अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ। पुर्तगाल के दिग्गज फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। इसी के साथ रोनाल्डो अब यूरोप के शीर्ष 5 लीग में 400 गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। और अब बात करते हैं कुश्ती की। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में एलेजांड्रो एनरिक तोबियर को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम बढ़ाया है। बजरंग 65 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं और ये चैंपियनशिप हंगरी में चल रही है। और अब आइए बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एक बार फिर से डेनमार्क ओपन खिताब जीतने से चूक गई है। साइना को महिला एकल वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताइजू युंग ने मात दी। वर्ल्ड नंबर 1 यिंग ने साइना को 52 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 13-21, 21-16 से मात देकर पहली बार डेनमार्क ओपन का खिताब अपने नाम किया। और अब जाने से पहले बात फॉर्मूला 1 रेसिंग की। आमतौर पर रफ्तार के खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन अपनी पहली पोजीशन छोड़ते नहीं है, पर इस वीकेंड कुछ अलग हुआ। यूएस ग्रां प्री में इस बार लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर आए हैं। दूसरा नंबर लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने और पहली पोजीशन पर आए हैं किमी रायकनन। खेल समाचारों में आज इतना ही।
समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि के उल्लंघन को लेकर रूस पर अपने आरोपों को दोहराते हुए परमाणु हथियार बढ़ाने की धमकी दी है। मध्य अमरीकी देशों से हो रहे पलायन को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होंडुरास, ग्वाटेमाला और एल सेल्वाडोर जैसे देशों की मदद रोकने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में बताया कि ब्रेग्जिट को लेकर लगभग 95% शर्तों पर सहमति हो गई है, लेकिन आयरिश सीमा पर अब भी बातचीत अटकी हुई है। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी के मामले में अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मनुशीन ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ निजी बातचीत की। सऊदी स्टेट मीडिया के मुताबिक दोनों ने रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारी वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।